ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायस्य भद्रेशो नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण के
कल जो श्लोक है ना
इसमें नहीं है क्या? इसमें मंगलाचरण नहीं है लगता है, इसमें नहीं है, है उसमें निकालो तो। हरे कृष्णा जी, तो आप लोग श्लोक आवृत्ति करेंगे। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। अनुवाद। मैं राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति पीले सोने के सदृश है, जो वृंदावन की महारानी हैं और राजा विश्वभान की पुत्री हैं और भगवान कृष्ण की अत्यंत प्रिय हैं। लोग दोहराएंगे, मैं राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के सदृश है, जो वृंदावन की महारानी है। आप राजा वृषभानु की पुत्री हैं और भगवान कृष्ण की अत्यंत प्रिय हैं। इस श्लोक में राधा रानी की विशेषता प्रकट की गई, उनका शरीर की अंग की कांति की विशेषता है तप्त कांचन। जैसे पिघला हुआ सोना होता है या सोने को जब तपा दिया जाता है तो बहुत सुंदर हो जाता है, उसमें और निखार आ जाता है। तप्त कांचन, ये सोने को तपाने से उसका सौंदर्य और बढ़ जाता है। तो जैसे तपा हुआ सोना वो सुंदर लगता है, उसी तरह राधा रानी का अंग का जो कांति है, शरीर का जो रंग है, तप्त कांचन गौरांगी, गौरांग है, गौरांग जैसे चेतन महाप्रभु गौरांग है और वो गौरांगी है। राधे वृंदावनेश्वरी, और फिर आए राधे। राधे माने जो आराधन करता है, जो श्री कृष्ण की आराधना करता है। ऐसा सुबह के सत्र में आप लोग सुने कि गर्ग संहिता में, श्रीमद् भागवतम में, अन्य आराधिता नूनम भगवान हरिश्वर, और कैसे है, सत्यम विहाय गोविंदम, आगे कलाइन। तो अन्य आराधिता, आराधना शब्द जो है, आराधना से ही राधा शब्द आया है। या राधा करते कि भी होता है राधन करना, पूजन करना। तो श्रीमती राधा रानी कृष्ण की आराधना करती हैं, उनके आराधना में रहती हैं। और समस्त गोपियों में राधा रानी की उपासना जो है श्रेष्ठ, इसलिए भगवान उनके आराधना से प्रसन्न हो जाते हैं। राधे, कि उनका नाम राधे है। इसे गर्ग संहिता से आप लोग सुने कि राधा रानी श्री कृष्ण के जितने भी भक्त हैं, उसमें उनकी आराधना जो है भगवान को अत्यधिक प्रिय है। इसलिए प्रणमामी हरि प्रिय, ऐसे श्रीमती राधा रानी जो भगवान के अत्यंत प्रिय हैं, हरि प्रिय हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। और वृंदावनेश्वरी, और वृंदावन की ईश्वरी हैं, महारानी हैं वृंदावनेश्वरी। वृंदावन के जो मालकिन हैं, ईश्वरी हैं, वो राधा रानी हैं। कृष्ण राजा हैं और राधा रानी हैं। ये महारानी श्री राधिके, महारानी श्री राधिका भी अपने दल बल के साथ जब वृंदावन में चलती हैं तो लगता है कि यहाँ कोई बहुत बड़ा महारानी आ रही है। तो उनको रानी नहीं, महारानी कहा जाता है। महारानी श्री राधिके, अष्ट सखिन के झुंड। और राधा रानी ऐसे नहीं चलती हैं, उनके साथ अष्ट सखी का झुंड रहता है। अष्टदल परी कैसे है, श्री राधा श्री हरि। राधा रानी जैसे कृष्ण ग्वाल बालों के संग में चलते हैं गोचारण में, तो उनके साथ भी अनेक भक्त होते हैं। भगवान कभी अकेले नहीं रहते हैं, तो उनकी जो प्रिया हैं श्रीमती राधा रानी, जो भगवान की आनंददायिनी शक्ति हैं या श्री कृष्ण से अभिन्न हैं, जैसे गर्ग संहिता, ब्रह्म वैवर्त पुराण, अनेक पुराणों में लिखा है कि श्री कृष्ण ही अपने ऐश्वर्य को राधा रानी के रूप में प्रकट किए हैं। श्री राधा रानी को अभिन्न ही माना गया है। ये ब्रज में ब्रजवासी लोग कहते हैं कि राधा कृष्ण एक ही हैं। लीला करने के लिए दो देह धारण किए हैं, राधा कृष्ण एक प्राण दो तनुधारी, दो तन में अपने को विभक्त कर देते हैं और ब्रज में इस तरह से लीला करते हैं। और ब्रजवासी लोग, ब्रज में प्रसिद्ध है कि राधा कृष्ण स्नेही और एक प्राण दो देही। एक प्राण है, एक प्राण है, मतलब एक ही है। तो लोग बोलते हैं कि ये दोनों एक दांत के रोटी खाते हैं। लोग बोलते हैं एक दांत के रोटी खाना। माने दोनों में बहुत अभिन्नता है, कोई अंतर नहीं है। तो राधा और कृष्ण एक ही तत्व हैं। ब्रज लीला में दो अलग अलग हैं राधा और कृष्ण के रूप में, एक मातृ शक्ति, जैसे गीता में भगवान कहते हैं मैं माता भी हूं और पिता भी हूं। भगवान माता भी हैं और पिता भी हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। भगवान एक साथ आली नाल हैं, उनमें सब कुछ है, सब भगवान में है और सब कुछ भगवान से है। फिर भी भगवान सब में नहीं है, सब कुछ भगवान में प्रविष्ट है लेकिन फिर भी सब कुछ भगवान नहीं है। सिद्धांत आचार्य लोग कहते हैं कि सब कुछ भगवान के अंदर है, या सब सारा चीज भगवान से ही उद्भूत होता है, प्रकट होता है, लेकिन सब भगवान नहीं हो सकता है, सभी भगवान नहीं हो सकते हैं। ऐसे भगवान श्रीमती राधा रानी को नहीं, सारे जीवों को प्रकट करते हैं। अनंत ब्रह्मांड में अनंत कोटि जीव गण है, सब भगवान के ही अंश अंशांश, कोई अंश है, अंश का अंश कला होता है, स्वांश होता है, विभिन्नांश होता है, तो उसी तरह राधा रानी यहाँ उनको यही कहा गया कि ये कहीं प्राण है, दो देह हैं, राधा कृष्ण स्नेही एक प्राण दो देह। इसलिए यहाँ पर वृंदावनेश्वरी राधा रानी को वृंदावन की ईश्वरी कहा जाता है, ब्रजेश्वरी, राधेश्वरी, ब्रजेश्वरी, मखेश्वरी, सुरेश्वरी, प्राणेश्वरी, कृष्णाकर्षणी, कृष्ण को भी जो आकर्षित करती हैं, अपने लावण्य माधुर्य भक्ति से श्रीमती राधा रानी कृष्ण को भी मोहित करती हैं, और भगवान कृष्ण जो सबको आकर्षित करते हैं, सबको मोहित करते हैं, भगवान में जो विशेष विशिष्ट चार गुण होता है, रूप माधुरी, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, वेणु माधुरी, चतुर्धा माधुरी जो है श्री कृष्ण में ही उनको विशिष्ट बना देता है, अन्य अवतारों से विशेष आकर्षण है श्री कृष्ण में, ये चार अन्य किसी में भी है नहीं है, यहाँ तक कि नारायण में भी नहीं है। तो चार जो विशिष्ट गुण है सबको आकर्षित करते हैं, जैसे मदन को मोहित किए, तो भगवान कृष्ण का नाम है मदन मोहन। वृंदावन में टेर कदम एक जगह है परिक्रमा मार्ग में, जहां कामदेव भी मोहित हो गए, कामदेव कृष्ण को मोहित करने के लिए आए थे, स्वयं मोहित हो गए, इसलिए भगवान का नाम है मदन मोहन, जो मदन को भी मोह लेता है, या भुवन मोहन, या भुवन आकर्षक, भगवान भुवन को भी आकर्षित कर लेते हैं, आ त्रिभुवन मोहन भी हैं, ऐसे भगवान को भी अपने भक्ति से राधा रानी मोहित कर लेती हैं। ये राधा रानी का नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है, मदन मोहन, हाँ मदन मोहन मोहिनी। तो राधा रानी के दिव्य गुणों में ये है कि कृष्ण को भी जो हमेशा अपनी ओर आकर्षित करती हैं, एक भक्त हैं और राधा रानी भक्त की, भगवान और भक्त की भूमिका में है राधा रानी। राधा रानी के यहाँ जो भाव भंगिमा है भक्त भक्त भूमिका में है, तो राधा रानी का आविर्भाव जो है ऐसे एक समय में गिरिराज जो है हिमालय पर्वत बहुत तप किए थे, हिमालय पर्वत जिसको गिरिराज कहा जाता है, जो गिरिराज जी भी हिमालय पर्वत के ही श्रेणी में थे, जो गोवर्धन में जो गिरिराज जी हैं हिमालय के पर्वत श्रेणियों में द्रोणी पर्वत है, और द्रोणी पर्वत के पुत्र हैं गिरिराज जी गोवर्धन, इसलिए हिमालय को भी गिरिराज कहा जाता है। तो हिमालय ने एक बार बहुत तप किया, तो उसे गिरिराज किशोरी पार्वती जी जन्म ली, पार्वती जी नाम हुआ क्योंकि पर्वत की पुत्री हैं, पर्वत की पुत्री होने से उनको पार्वती कहा जाता है, जिनका आगे चल करके हिमालय ने शिव जी से विवाह किया, तो हिमाचल का बहुत जश बढ़ गया, बहुत उसका कीर्ति जो है बढ़ गया, जो वैष्णव चूड़ामणि शिव जी हैं इनके पुत्री से पानी ग्रहण किए। शिव जी की भी महिमा बहुत है, जिनके सर पर गंगा जी हैं, गंगाधर हैं, और चंद्रमौली हैं, जो चंद्रमा को धारण करते हैं, और जो विष को पान कर गए, गले में उनके आज भी वो प्रतीक के रूप में है, नील कंठ, जिनका कंठ नीला हो गया, नील कंठ। तो शिव जी से संबंध हुआ, जब शिव जी उनके दामाद हो गए तो बड़ा नाम हुआ, यार विंध्य पर्वत भी के मन में इच्छा हुई। विंध्य पर्वत विशाल पर्वत है, तो विंध्य पर्वत भी तप किए कि मैं भी एक ऐसी पुत्री प्राप्त करूंगा। गर्ग संहिता में यह है कि एक ऐसी पुत्री प्राप्त करूंगा जो भगवान श्री कृष्ण से विवाह करूंगा। बहुत तप किए, उसके फलस्वरूप उनको दो पुत्रियां प्राप्त हुई। तो जिसमें एक श्रीमती राधा रानी हुई, जिसमें बाल रूप में ही अभी जन्म हुआ था, तो एक असुर जो है उनको उठा ले गया। बहुत दिव्य बालिका, उसके शरीर से मन चंद्र बदना, चंद्र जैसी किरणें निकलती थी, यह देख करके उठा ले गया। वो जब लेकर जा रहा था तो आकाश मार्ग से, जैसे पुतना जो है आकाश में चलती थी, पुतना का एक नाम है खेचरी, माने आकाश में चलती थी, तो आकाश मार्ग से असुर ले जा रहा था। जब ब्रज क्षेत्र में रावल के समीप जा रहा था तो श्रीमती राधा रानी ने अपना वजन विस्तार किया, वजन का आविष्कार किया, तो इतना वजन आविष्कार किया कि वो असुर जो है उसको संभाल नहीं पाया, और रावल के समीप में जमुना जी पहुंचती हैं आज भी। ये लोग रावल गए होंगे, कितने लोग रावल गए हैं, तो जमुना जी पहले बहुत समीप बहती थी, अब थोड़ी दूरी पर हैं, और वहाँ सघन कमल के वन थे। आज भी जमुना जी में वहाँ पर बहुत सारे कमल, कुमुद कमल के पौधे उगे रहते हैं, तो उसी कमल के सघन पुष्पों के ऊपर वो रख दिया। और प्रातः काल जब वृषभानु महाराज प्रातःकालीन शैर पर थे, भ्रमण में थे, तो देखे बहुत ज्योति निकल रहा था उस वन से, कमल वन से बहुत दिव्य प्रकाश निकल रहा था, तो उनको बड़ा कौतुक हुआ कि क्या वस्तु है। जब नजदीक गए तो देखे बहुत छोटी बालिका है, कमल के पुष्पों के ऊपर से लुढ़क रही है, खेल रही है, तो उसका शरीर का आभा पिघले सोने के समान चमक रहा था, अंग कांति तप्त कांचन, उसको ले लिए गोद में, और वहां से फिर बरसाने ले आए। राधा रानी को प्राप्त किए कहां, रावल में, और ले आए कहां, उनका किला था बरसाने में, भानगढ़, जहाँ श्री जी राधा रानी विराजमान है, जिसको भानगढ़ कहते हैं, जहाँ किला है वृषभानु महाराज का, तो वहाँ पालन पोषण किए। कीर्तिदा उनकी माँ कीर्ति और वृषभानु मिलकर पालन किए, कीर्ति माँ है, कीर्तिदा जो कीर्ति प्रदान करती है, कीर्ति ददाती इति कीर्तिदा, जैसे यशोदा, यश ददाती इति यशोदा, यशोदा का ही अर्थ होता है यश ददाती यशोदा, और कीर्ति का भी यही अर्थ होता है, कीर्ति माने जश। कीर्ति किसको प्रदान करती है, माने समस्त जगत को, जिनके यहाँ राधा रानी आई हैं, राधा रानी के चलते वृंदावन के सौभाग्य को कीर्ति बढ़ा रही है। वृंदावने सखी भूओ बितनोति कीर्ति, वृंदावन का जो कीर्ति है, जो सौभाग्य है, बढ़ रहा है और वृंदावन समस्त भूमि का सौभाग्य सृजन कर रहा है। जहाँ पर राधा कृष्ण जुगल या कृष्ण बलराम जिस वृंदावन के भूमि में लीला कर रहे हैं, तैसे राधा रानी बरसाने में उनका गांव माना जाता है, प्राप्त की गई थी रावल में और उनका आगे चलकर विवाह हुआ तो उनका विवाह का गांव है जावट, जावट बोलते हैं। ऐसे लोग बहुत सारे कथाकार लोग कहते हैं कि अभिमन्यु गोप से राधा रानी का विवाह हुआ था। अभिमन्यु गोप भी कृष्ण के ही विस्तार हैं, कृष्ण के ही एक विस्तार रूप हैं। राधा रानी से किसी कौन विवाह कर सकता है? जब ब्रह्म विमोहन लीला में ब्रह्मा जी ग्वाल बालों को और बछड़ों को चोरी करके ले गए तो उतने ग्वाल बाल और बछड़े के रूप में कृष्ण अपना विस्तार किए थे, तर किए थे ना? जितने ग्वाल बाल और जितने बछड़े थे ब्रह्मा जी चोरी करके ले गए ब्रह्मलोक में, तो श्री कृष्ण अपना विस्तार कर दिए। जितने भी ग्वाल बाल थे और जितने भी बछड़े थे और वत्स पालक थे, कृष्ण ही स्वयं बन गए। तो उसी समय में गर्गाचार्य जी कहे कि इस समय बहुत सुंदर मुहूर्त आया है और एक साल का ये मुहूर्त, एक साल कृष्ण ग्वाल बाल और बछड़े बने थे। एक साल तक जितने बछड़े, जैसे बछड़े थे, जैसा रंग था, वैसे ही कलर में बन गए थे। वैसा पूंछ, वैसा श्रृंग, वैसा कान, वैसा चाल, वैसा बान, सब कुछ कृष्ण बन गए थे। और जो बच्चे थे, बच्चों का भी वैसा, जिसका जैसा भ्रकुटी थी, जैसा संचलन था, जैसा बाल था, जैसा पहनावा था, जैसा हास्य मुस्कान था, हू बहु ऐसा बन गए। न गायों को पता चला न माताओं को कि कोई और कृष्ण बने हैं, बल्कि माताओं में और गायों में और बात्सल्य जो है अधिक बढ़ गया था। कृष्ण ग्वाल बाल और बछड़े जब बने तो गायों में भी और बात्सल्यमयी जो गोपियां थीं उनमें बात्सल्य और भी अधिक हो गया था। गायों का अपने बछड़ों के प्रति स्नेह और बढ़ गया था और माताओं का भी अपने बच्चों के प्रति। बलराम जी कृष्ण से कहे कि गायों में बछड़ों के प्रति इतना स्नेह कैसे जागृत हो गया है? बलराम जी नहीं जान रहे थे। कृष्ण से कहे कि गायों में जो ने बच्चों को दूध पिलाने के लिए, चाटने के लिए, जब बच्चा दूध पीता है गाय का तो गाय उसको चाटती है और चाट करके उसके शरीर को स्वच्छ कर देती है। हम लोग देखे हैं छोटा बच्चे को गाय अपने जीभ से चाट करके उसके शरीर को साफ कर देती है। जैसे माँ जो है अपने बच्चे को नहला धुला करके तेल लगा करके ठीक कर देती है, वैसे मानो जीभ से गाय बछड़े को चाट करके उसको कंघी लगा देती है। ऐसा लगता है कंघी से एक एक। तो गायों में इतना बच्चों के प्रति आकर्षण देखकर बलराम जी को भी आश्चर्य हो रहा था। कृष्ण से वार्तालाप कर रहे थे, देखिए ना गायों में इतना आकर्षण है और बच्चों में जो बात्सल्यमयी गोपियां हैं अपने बच्चों के प्रति बहुत प्रेम बढ़ गया है कि स्वयं श्री कृष्ण ही बछड़े बने हैं और ग्वाल बाल बने हैं। तो गर्गाचार्य जो नंद महाराज के भी पुरोहित हैं और वसुदेव जी के भी गर्ग मुनि जिन्होंने गर्ग संहिता लिखा है, तो गर्गाचार्य एक समय में उनसे गोपों ने कहा कि मुहूर्त देखिए, मैं बच्चों को विवाह करना है, हर साल विवाह होता ही है ना, तो गर्गाचार्य जी जब अपना पतरा उठाए तो कहे कि एक साल ऐसा मुहूर्त है जो बहुत कम आता है, हजारों लाखों वर्ष में आता है, और ऐसा मुहूर्त जो ये है विवाह का, ऐसा सुंदर मुहूर्त फिर आएगा कि नहीं आएगा कोई ठीक नहीं है। ये समय में एक साल के अंतराल में जो विवाह होगा जिसका, वो स्वयं भगवान से विवाह हो जाएगा, ऐसा मुहूर्त दे रहा है। किसी को यह पता नहीं था कि कैसे कृष्ण से विवाह होगा, यह कौतुक केवल कृष्ण जानते थे कि कृष्ण ही उतने ग्वाल बाल बने थे। तो श्री कृष्ण ग्वाल बाल बने थे तो उस समय बहुत विवाह हुआ, मुहूर्त देख करके, शुभ काल योग देख करके बहुत विवाह हुआ। तो जितना भी विवाह हुआ सब श्री कृष्ण से विवाह हो गया, क्योंकि उतने ग्वाल बाल कृष्ण बने थे, कृष्ण ग्वाल बाल के रूप में अपना विस्तार किए थे। तो जिस भी बालिका का, गोपी का विवाह हुआ तो श्री कृष्ण से हो गया। प्रकारांतर से अभिमन्यु गोप भी कृष्ण ही बने थे, विवाह हो गया राधा रानी का कृष्ण से। तो ऐसे राधा रानी कृष्ण जब गोप अभिमन्यु गोप से विवाह हो गया तो अभिमन्यु की माँ का नाम था जटिला, बहुत जटिल थी, स्वभाव में बहुत जटिलता था, और बहन का नाम था कुटिला, वो बहुत कुटिल स्वभाव की थी, जिसका स्वभाव बहुते होता है इधर उधर करना, झगड़ा लगाना, तो उसको लोग बोलते हैं बड़ा कुटिल है। तो बहन कुटिला थी, तो राधा रानी का जब विवाह हुआ तो ससुराल गई जावट। तो कृष्ण कभी कभी वहां जाते थे, या अभिमन्यु गोप के रूप में भी वही थे। एक समय में श्री कृष्ण जावट में जब गए तो राधा रानी उनकी पूजा कर दी, आराधना, आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम रम्या काज दुपासना ब्रज बधु। ब्रज की बालाओं ने जो जैसी पूजा की है श्री कृष्ण की, उसमें भी श्रीमती राधा रानी अन्य आराधिता नूनम। सुखदेव गोस्वामी राधा रानी का अप्रत्यक्ष नाम ले रहे थे, अन्य आराधिता, आराधिता जो आराधित हैं, श्री कृष्ण की आराधना करती हैं, वही राधा है। आप सुने ना सुबह में कि सुखदेव गोस्वामी राधा रानी का नाम नहीं लिए हैं भागवत में, क्योंकि वो लीला सुख हैं, गोलोक में सुखदेव गोस्वामी लीला सुख हैं, सुख पक्षी हैं राधा रानी के, और राधा का नाम लेते थे तो समाधि हो जाती थी, और 7 दिन में कथा उनको सुनानी थी, इसलिए राधा रानी का नाम नहीं लिए, इनडायरेक्ट में लिए। तो श्री कृष्ण की आराधना कर रही थी राधा रानी जावट में, तो कुटिला ने देखा, तो कुटिला ने क्या किया, बाहर से दरवाजा लगा दी और सारे लोगों को बुलाई कि देखो ये हमारी भौजाई जो है कृष्ण की पूजा करती हैं, मेरी भौजाई पागल हो गई है, पर पुरुष की आराधना कर रही है। तो अपनी माँ को बुलाई, जटिला को और बहुत सारे लोगों को कि मैंने ताला बंद करके रखा है, सब लोग आए, कहे कि ठीक, जब दरवाजा खोला गया तो वहाँ दुर्गा जी की प्रतिमा है और राधा रानी पूजा कर रही हैं, कात्यायनी देवी के रूप में कृष्ण अपने को बदल दिए और राधा रानी कात्यायनी की पूजा कर रही है। गोपियां कात्यायनी की पूजा करती हैं ना, कात्यायनी महामाए महाजोगी नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरते नमः। ब्रज की जो बालाएं थी, कात्यायनी अर्थात दुर्गा जी, दुर्गा के अनेक नाम है, जैसे नारायणी, भद्रकाली, कपालनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाधा, स्वाधा, नमस्तुते, कन्यका, शारदा, वैष्णो देवी, मुंबा देवी, अन्नपूर्णा, महाकाली, कटक में भद्रा, अनेक नाम हैं, शारदा, विंध्यवासिनी, नारायणी, वैष्णवी, ये सब दुर्गा जी का नाम है। भगवान की लीला में जोग माया है और माया यहाँ महामाया है। कात्यायनी महामाये, महाजोगिनी, जो महाजोग जानती है, अनेक जोगियां जोग सिद्धियां प्राप्त की हैं। अधीश्वरी, ब्रज की अधिष्ठात्री हैं वो भी, क्योंकि राधा रानी के वो भी अंश अंशांश हैं। जितनी भी देवियां हैं राधा रानी के अंश हैं। तो जब दरवाजा खोली कुटिला तो वहां दुर्गा जी की प्रतिमा विराजमान है, नारायणी कात्यायनी। तो वहां पर उपस्थित सारे लोगों ने कहा कि तुम बहुत कुटिल हो, ऐसे झूठ तुम आरोप लगाती हो, है? कितनी भोली भाली तुम्हारी भौजाई मिली है, इसके ऊपर आरोप लगाती हो, तो देवी की पूजा कर रही है। तरह से भगवान लीला करते हैं। तो राधा रानी अप्रच्छन्न रूप से कभी कभी कृष्ण से मिलती थी। एक बार जावट में गए तो जाने से पहले अभिमन्यु जो है कहता है कि मैं जा रहा हूं और आप लोग देखना कोई दूसरा ना आ जाए। तो श्री कृष्ण बड़े कौतुक हैं, जब अभिमन्यु गोप जब चले गए, नहीं श्री कृष्ण ही जो है अभिमन्यु गोप के रूप में आए और कहे कि देखो माँ, कृष्ण बड़ा छलिया है, वो तो हमारा भेष लेकर के आए तो उसका आप लोग धुलाई कर देना। कृष्ण ही अभिमन्यु गोप में थे और कह रहे थे जटिला और कुटिला को कि कृष्ण हमारा रूप लेकर कभी आ सकता है, उसको अब धुलाई करना। और कृष्ण यह कहकर चले गए। कृष्ण तो जानते ही हैं अभिमन्यु गोप का आने का समय हो गया था। अभिमन्यु गोप आए तो जटिला कुटिला ने समझा कि कृष्ण अभिमन्यु गोप के रूप में आ रहा है, तो ले झाड़ू जूता चप्पल से बहुत धुलाई की है वो लोग। अभिमन्यु करा कि मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, मैं क्यों मार रही हूँ, आप पुत्र हो, तुम पुत्र नहीं हो, तुम नंद के पुत्र नहीं हो, तुम भूत हो, काला हो। गोपियां कहती हैं, वो जटिला कुटिला कहती हैं कि तुम नंद के सूत हो मैं जानती हूँ, लेकिन तुम भूत हो, तुम भूत के रूप में आ जाते हो। बाद में उन लोगों को ये होता है कि हम लोग अपने पुत्र को ही मार रही हैं। तो राधा रानी ऐसे ब्रज में श्री कृष्ण के आनंद प्रदान करती। एक बार राधा रानी को दुर्वासा जी, विश्वभानु महाराज के यहाँ दुर्वासा मुनि आए थे, तो राधा रानी ने उनका बहुत आतिथ्य स्वागत किया था, उनको अनेक पकवान बना करके उनको प्रसन्न कर लिया था। दुर्वासा मुनि को प्रसन्न करना टेढ़ी खीर है, लेकिन जब प्रसन्न हो जाते हैं तो वो आशीर्वाद भी दे देते हैं। तो बहुत प्रसन्न होकर राधा रानी को आशीर्वाद दिए कि तुम्हारे हाथ से जो कोई भी भोजन ग्रहण करेगा वो निरोग हो जाएगा, स्वस्थ रहेगा, दीर्घायु होगा, उसका बल की कोई सीमा नहीं होगी। बहुत सारा आशीर्वाद दिए दुर्वासा मुनि। एक समय में जो मधुमंगल की माँ पूर्णमासी जी जो हैं पुरोहितिन थी, तो नंद महाराज की भी पुरोहितिन थी और विश्वभानु महाराज दोनों जगह जाती थी। पुरोहित की पत्नी को क्या बोलते हैं? पुरोहितिन। तो पूर्णमासी जी एक समय में इस बात को जिक्र कर रही थी यशोदा जी से, को विश्वभानु पुत्री राधा रानी को दुर्वासा ने आशीर्वाद दिया है, उसके हाथ से जो भोजन ग्रहण करेगा वो पूर्ण स्वस्थ रहेगा, अजर अमर हो जाएगा, उसको कोई पराजित नहीं कर सकता है, वो सब वर्णन कर रही थी पूर्णमासी जी। तो यशोदा जी ने कहा कि तो बहुत अच्छा है, आप कीर्ति से कहिए कि हमारे यहाँ आकर कभी कभी भोजन बना दिया करे राधा रानी। आनंद गांव बरसाना दूर नहीं है, नजदीक है। नंद गांव से बरसाने की दूरी कितना? 5 किलोमीटर होगी। तो यशोदा जी ने कहा कि पूर्णमासी जी आप कीर्ति से कहिए कि राधा रानी हमारे यहाँ आकर श्री कृष्ण के लिए भोजन बना दिया करे। ऐसे भी मित्रता थी नंद में और विश्वभानु महाराज में मित्रता थी। तो यशोदा जी के निवेदन पर पूर्णमासी जी ने कीर्ति से कहा था, देखो यशोदा जी ने निवेदन किया है राधा रानी को कभी भेज दिया करो, उनके भोजन का ये महिमा है कि कृष्ण खाएंगे तो बलिष्ठ हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। यशोदा जी की ये कामना है कि उनका जो पुत्र है दीर्घायु हो, बलिष्ठ हो और कोई रोग न हो। तो राधा रानी एक समय में इस तरह से पूर्णमासी जी के निवेदन से कीर्ति ने भेजा था राधा रानी को। तो यशोदा जी ने सोचा कि क्यों न ये हमारी बहू बन जाए राधा रानी। तो प्रतीक के रूप में उनके हाथ में हल्दी लगा दी। हल्दी जब विवाह होता है तो हल्दी लगाया जाता है वर वधू को, तो हाथ में यशोदा जी ने हल्दी लगा दिया। और राधा रानी जब नंदगांव से बरसाना जा रही थी तो उनको हाथ में पीली पीली हल्दी देखकर बड़ा शर्म आ रहा था। तो बरसाने के समीप आई तो एक वहाँ पोखर था, उस पोखर में उन्होंने अपना हाथ धो दिया कि ये हल्दी लगा हुआ लेकर जाऊंगी तो लोग क्या सोचेंगे। तो उस पोखर का नाम होगा पीली पोखर। और जब नंद गांव से चलेंगे तो बीच में एक प्रेम सरोवर है जहां राधा कृष्ण का प्रथम मुलाकात हुआ था, उसके आगे साकेत वन है जहां कृष्ण राधा रानी को संकेत वन में मिले थे, और वहीं राधा कृष्ण का प्रथम मिलन हुआ जहां राधा और कृष्ण के प्रेमामृत से वो सरोवर बना जिसको प्रेम सरोवर कहते हैं। बहुत सुंदर सरोवर है। वहां से आगे बढ़ेंगे तो यही पीली पोखर है जिसमें राधा रानी ने अपना हाथ धो दिया था, तो उसका पानी आज भी पीला होता है। उसके उस कुंड का पानी जो है पीले येलो कलर का है, तो भी हाथ में पीला रंग रह गया था। तो उन्होंने मानो यशोदा जी ने कीर्ति को संकेत किया था कि आप हमारे कन्हैया से विवाह कर लो। तो ऐसे राधा रानी की अनेक कृष्ण के साथ अनेक लीलाएं हैं। और विश्वभानु महाराज जो ब्रज में बरसाने में जब रहते थे तो कभी वहां पर नंद महाराज भी अपने मित्रों के साथ आते थे और कृष्ण साथ में आते थे। तो राधा कृष्ण की वहां अनेक लीलाएं हुई हैं, जैसे साकरी खो है जहां कृष्ण कहते थे मैं राजा हूं ब्रज का, राधा रानी वृंदावनेश्वरी हैं, श्री कृष्ण ब्रजेश्वर हैं, कृष्ण नंद महाराज के हैं। तो वहां दान मांगते थे कभी कभी, जो गोपियां गोरस बेचत अवैत जाइत। विद्यापति ने लिखा है कि जब गोपी जन गोरस बेचने के लिए, गोरस मतलब आप लोग जानते हैं गोरस है दूध, गोरस बेचत अवैत जाइत, जो भी गोरस बेचने, दूध बेचने, घी बेचने, दही बेचने मथुरा जाते थे तो कृष्ण रोकते थे सकरी गली में और वहाँ सबसे दान लेते थे। बरसाना में चार चीज प्रसिद्ध है, जहाँ बरसाने में ब्रह्मा जी पर्वत बने हैं, ब्रह्माचल, ब्रह्मा जी वहाँ पर्वत बने हैं और ब्रह्मा जी का चार सिर है। उसी तरह बरसाना में जो पर्वत, उसमें चार चोटी है, चार गढ़ है, दान गढ़ है जहाँ दान लेते थे। और फिर मान गढ़ है जहाँ राधा रानी ने मान किया था, मान लीला। फिर विलासगढ़ है जहाँ जहाँ मयूर कुटी भी है, जहाँ श्री कृष्ण राधा रानी के मान लीला में मयूर बनकर नृत्य किए थे, मोर कुटी, मोर बिहारी जी का जहाँ मंदिर है। फिर भानगढ़ जहाँ विश्वभानु महाराज का किला था, किला है जहाँ मंदिर है, भानगढ़। चार एक गढ़ है माने ब्रह्मा जी का चार सिर का प्रतीक है, ब्रह्मा जी का चार सिर है। तो उस पर्वत में चार श्रृंखलाएं हैं, दानगढ़, मानगढ़, भानगढ़, विलासगढ़। तो दानगढ़ में गोपियों के साथ भगवान ने दान लीला किया है, गोरस बेचत अवित जाइत जन जन पुछ बनवारी। तो हेमतिमान सुमति मधुसूदन, मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण जो मधु नामक दैत्य को वध किए थे, ऐसे महान पराक्रमी भगवान ब्रज में कभी कभी गोपियों से दान लीला करते हैं, कभी मांगते हैं, कई भगवान मांगते भी है ना, कभी चोरी करते हैं या कभी जबरदस्ती मटकी लेकर फोड़ देते हैं और दही दूध को फैला देते हैं। मटकी फोड़ दही फैलाए, गोपियां कहते हैं दही फैला देता है। तो कभी कभी गोपियों में और ग्वाल बालों में रार होता है, झगड़ा होता है दोनों तरफ से, लठमार होली बरसाने की लठमार होली प्रसिद्ध है, गोपियां लठ मारती हैं कि तुम दही मटकी फोड़ते अब बहुत हो गया, अगर तुम ऐसे करोगे तो हम लोग कंस से खबर लगाई दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तुम आधी रात में भाग करके आया मथुरा कंस के भय से, तुम वीर बनते, ऐसे गोपियां कहती थी। तो कभी गोपीजन लाठी लेकर के ग्वाल बालों को प्रहार करती हैं। तो बरसाना में जो ये चार जो मुख्य स्थलियां हैं, भगवान के बहुत सुंदर लीलाएं हुई हैं। कभी कभी श्री कृष्ण ग्वाल बालों को बुलाते थे कि यहाँ हमें अब दान लेने चलना है ब्रज में, अरे बरसाने में। तो गोरस और दही घी लेकर के बंदरों को, ग्वाल बालों को खिलाते थे ब्रज में। भगवान ग्वाल बालों को कि जितने देवता हैं वो यदु वंश में आए हैं, वेद की ऋचाएं और कुछ जो है गोपियों का भी अलग अलग युद्ध है, जैसे जनकपुर की बालाएं हैं, दंडकारण्य के ऋषि भी गोपी बने हैं और अयोध्या के भी कुछ बालाएं हैं और कुछ देव पत्नियां हैं, देवता लोग भी यदु वंश में आए। जब भगवान आए तो सारे देवता यदु वंश में भगवान के लीला में आए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कभी कभी ग्वाल बालों को संकेत करते हैं, नंद नंद कदम्ब तरु तले, धीरे धीरे मुरली बजाओ आ समय संकेत निकेतन बैसल, विद्यापति लिखते हैं पद में, बेरी बेरी बोल पठाओ। कभी जब ये होता था तो बुलाते थे ग्वाल बालों को या श्रीमती राधा रानी को, उनका जो मीटिंग प्वाइंट है, भगवान का जैसे कदम खंडी है जहाँ रासलीला होता है, या कुछ मिलने का जगह है जैसे साकेत वन है नंदगांव की तरफ, प्रेम सरोवर है, या दान घाटी है, या मानगढ़ है, बिलासगढ़ है, तो आज ही आप बरसाना में जाएंगे तो बहुत सुंदर पर्वत की मालाएं हैं। आप जो परिक्रमा करेंगे तो देखें बहुत सुंदर सुंदर कुंज हैं, बितान हैं, बहुत सुंदर वृक्ष हैं, आज भी सुरक्षित हैं। जब ऊपर आप चढ़ेंगे मानगढ़ के ऊपर, बहुत सुंदर सुरम्य जगह है, ब्रज में सबसे सुंदर जगह जो है बरसाना है, बहुत सुंदर गांव है, ऐसा गांव आप नहीं देखेंगे। जब भानगढ़ के ऊपर आप चढ़ेंगे रात में देखेंगे तो बहुत सुंदर दिव्य दर्शन होता है राधा जी के गांव में, और कुंजों के छांव में राधा रानी का जो गांव है जहां बहुत सारे कुंज हैं, और ऊपर चढ़ेंगे भानगढ़ के श्री जी पर, श्री जी के मंदिर पर, तो देखेंगे वहां बहुत सुंदर वातावरण होता है, बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, लताएं हैं, कुंज हैं, जहां श्री कृष्ण कुंजों में विश्राम करते हैं। और जब भूख लगता है तो ग्वालिन के घर में, राधा रानी के घर में जाकर चोरी करते हैं या दान मांगते हैं, और नहीं देने पर छीन कर ले लेते हैं, या कभी कभी वो नृत्य भी करते हैं। गोपियां कहते हैं आप बहुत अच्छा नृत्य करते हो, तो नृत्य करते हैं तो गोपियां उनको माखन देती हैं। तो राधा रानी का गांव है बरसाना, ब्रज के कवियों ने बहुत सुंदर सुंदर पद लिखा है कि जहां बरसाना श्री कृष्ण को भी जो वो निकुंज और कुंज जो पर्वत मालाएं आकर्षित करती हैं, तो श्री कृष्ण बरसाना में राधा जी के गांव में कुंजों के छांव में रहता है मोर मुकुट वाला। कृष्ण ज्यादा समय बरसाना में भी रहते हैं, कभी बरसाना में गोचारण के बहाने जाते हैं, कभी खेल करने के लिए जाते हैं, और विशेष करके जैसे होली पर तो अवश्य जाते हैं। ये ग्वाल बालों का दल होता है, गोपी लोगों का दल होता है, यहाँ बरसाने का लठमार होली प्रसिद्ध है। एक समय में रंग का होली चलता है, रंग अबीर गुलाल इतना बरसता है कि सब लाल हो जाता है, गगरी गिलास पलास रंगाइल, जमुना तटके सब वृक्ष रंगाइल, इतना होली चलता है, रंग अबीर चलता है। एक गोपियों का दल है, राधा रानी का एक दल है, और एक ग्वाल बालों का दल है, इतना अबीर रंग गुलाल बरसता है कि सब पेड़ लाल लाल हो जाते हैं, जमुना जी भी लाल हो जाती हैं, और जितना गगरी है गलास है परात है सब बर्तन भी लाल लाल हो जाता है, इतना अभिव्रत। फिर फूल की होली होती है, फूल जैसे फूल से अभिषेक होता है ना, तो राधा रानी और नंदगांव और बरसाने के लोग फूल की होली खेलते हैं। फिर फूल से नहीं होता है तब लठ का होली होता है, लठमार होली, गोपियां लठ मारती हैं, ग्वाल बाल रुकते हैं। बरसाना में बहुत सुंदर मतलब लीला है। तो राधा रानी का जन्म उत्सव है, और विशेष करके बरसाने में बहुत उत्सव होता है, देश विदेश के लाखों करोड़ों लोग वहां जाते हैं। बरसानो जानो नहीं कियो न जमुना पान, तेतैनो जानो कहां ब्रज को तत्व महान। जो तत्व है राधा तत्व और श्री कृष्ण तत्व, ये दो ही तत्व मिलकर ब्रज बना है, ब्र और ज। ब्र मतलब कृष्ण का प्रतीक है, और ज मतलब राधा का प्रतीक है। ये राधा कृष्ण जो है ब्रज के कण कण में जाके, कण कण में मिली जुगल चरण की धूल, राधा कृष्ण के जुगल चरणों का जो धूल है पूरे ब्रज 84 कोष में है। ब्रज 84 कोष में 5 मुख्य हैं गांव। ब्रज 84 कोष में मुख्य 5 गांव हैं: नंदगांव, बरसाना, वृंदावन, मथुरा, गोकुल। हो गया ना पान? नंदगांव अस गांव नहीं, कृष्णाम अस नाम। अब बंसी वटस बट नहीं आए, वृंदावन सो बन नहीं, नंदगांव सो गांव। आ कृष्ण नाम जस नाम नहीं, बंसी बट जस बन नहीं, नंदगांव जस गांव। ये सब दिव्य गांव हैं। नंदगांव है, बरसाना है, गोवर्धन है, गोकुल है, रमण रहती है, जहां राधा कृष्ण की बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हुई हैं। आप जाएंगे बरसाने की परिक्रमा करेंगे तो जब आगे बढ़ेंगे तो जो गह्वर कुंड है, जिसको कृष्ण कुंड भी बोलते हैं, गह्वर कुंड बहुत गहरा कुंड है, वहां भी राधा कृष्ण की लीला हुई है। गह्वर कुंड पर बहुत सारे पुष्प आज भी हैं, फूल हैं, और बहुत सुंदर सुंदर कुंज हैं जहां राधा कृष्ण की लीलाएं होती थी। आज भी राधा कृष्ण की झांकी वहां प्रस्तुत की जाती है। प्रतिदिन राधा कृष्ण की झांकी लीला वहां की जाती है। तो बरसाना बहुत सुंदर जगह है, और जहां राधा रानी का जो प्राचीन स्थलियां हैं उसमें एक पहाड़ी है जहां राधा रानी, राधा कृष्ण के चरण चिन्ह आज भी वहां है। बरसाने में जाएंगे तो चरण पहाड़ी है जहां राधा कृष्ण के चरण के चिन्ह हैं। और एक जगह जहां राधा रानी विश्राम की है तो पहाड़ी पर राधा रानी के लहंगे और उनके ओढ़नी का छाप है पहाड़ के ऊपर। अब परिक्रमा जब बरसा काम बन से परिक्रमा चलती है तो बरसाना कदम खंडी है, कदम खंडी जहां भगवान की लीला होती है। तो पहाड़ी में जब आएंगे तो बहुत सारे चरण चिन्ह हैं राधा कृष्ण के, राधा महारानी श्री राधिके अष्ट सखिन के झुंड। राधा रानी अष्ट सखियों के झुंड के साथ जब जाती हैं तो जिस पहाड़ी पर विश्राम करती हैं तो आज भी उनके ये ओढ़नी का चिन्ह बना है, ऐसे पहाड़ी के ऊपर छाप पड़ा हुआ है, उनके पंजों का हाथ का चिन्ह है। तो ये बरसाना जो है राधा कृष्ण का प्राण जो है प्राण भूमि है, स्वयं राधा कृष्ण ही का ही विस्तार है। ब्रज 84 कोष जो है राधा कृष्ण का ही स्वरूप माना जाता है। जो ब्रज भूमि है उसका भगवान स्वयं विस्तार किए हैं, चिन्मय भूमि है, राधा कृष्ण से भिन्न नहीं है वृंदावन या 84 कोष, इसलिए चिंतामणि कहा जाता है। वृंदावन भूमि को चिंतामणि प्रकर सदम, जो हमेशा दिव्य भूमि है, सुकल्प वृक्ष। अब वृंदावन में जो वृक्ष हैं सब राधा रानी के स्वरूप हैं। वृंदावन के वृक्ष को मरम जाने कोई, डार डार फल पात पे राधे राधे हुए। वहां की भूमि चिंतामणि है, और वृक्ष जो है कल्प वृक्ष है, और जो गाय हैं वो सुरभि गाय हैं, और जो ग्वाल बाल हैं, जो गोपी जन हैं, वो भी भगवान के अभिन्न हैं, उनके मतलब पार्षद हैं, उनके नित्य परिकर हैं। तो आज राधा रानी के जन्म उत्सव पर राधा रानी के अनेक गुणों का भक्त लोग कीर्तन करते हैं, चिंतन करते हैं। राधा रानी में भी अनेक गुण हैं, जैसे श्री कृष्ण गोविंदम आदि पुरुषम से आदि शक्ति है राधा रानी, वही आदि महारानी है और सारे देवियों के वही उत्स हैं, उद्गम हैं। तो उनमें भी श्री कृष्ण जैसे अनंत गुण हैं। तो राधा रानी के भी गुणों का वर्णन है ना, राधा रानी में भी कृष्ण जैसा ही असीमित गुण है, इसका कोई ये नहीं कर सकता है। ये श्री कृष्ण राधा के गुणों के बस में रहते हैं। एक समय में श्री कृष्ण राधा के गुणों का चिंतन कर रहे थे, श्री कृष्ण राधा के गुणों का चिंतन कर रहे थे जैसे चेतन महाप्रभु, तो चिंतन करते करते गौरांग हो गए। श्री कृष्ण राधा के गुणों का चिंतन करते करते उनके हृदय और उनके अंग कांति को ले लिए तो गौरांग हो गए या रास बिहारी हो गए, गौरांग हो गए। रास नृत्य में श्री कृष्ण गौरांग हो गए, राधा रानी का चिंतन कर किए तो राधा रानी जैसा गौर बन के हो गए। तो यहाँ पर कहा गया तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी। श्री राधा माने जो राधन करने में हमेशा श्री कृष्ण के आराधना में जो रहती है, इसलिए राधे हैं। आराधना और राधना ये कहीं शब्द है, ये बोलते हैं बड़ा आराधना कर रहे हैं या कोई राधन करता है, तो राधे नाम हुआ कि श्री कृष्ण की जो आराधना हमेशा करती हैं। श्री कृष्ण के भक्त भूमिका में राधा रानी हमेशा श्री कृष्ण का आराधना करती हैं और श्री कृष्ण राधा का आराधना करते हैं, श्री कृष्ण राधा के गुणों का चिंतन करते हैं और राधा कृष्ण का चिंतन करती हैं, इसलिए राधे नाम हुआ। और वृंदावनेश्वरी श्री राधे वृंदावनेश्वरी जो वृंदावन की मालकिन है, महारानी है, महारानी श्री राधे के अष्ट सखिन के झुंड, अष्ट सखियों के झुंड में राधा रानी चलती हैं, तो पूरा मार्ग जो है उजियारा हो जाता है। रात्रि में भी चलती हैं तो मानो कोई प्रकाश फैल रहा है ब्रज में। इसलिए राधे वृंदावनेश्वरी, वृंदावन की बनेश्वरी हैं, मालकिन हैं। जैसे तमाल जी बता रहे थे ना, ब्रजेश्वरी, प्राणेश्वरी, मखेश्वरी, सुरेश्वरी, बहुत सारा राधा रानी का नाम है। श्री कृष्ण को भी जो अपने माधुर्य लीलाओं से मोहित कर लेती हैं, ऐसे श्रीमती राधा रानी से भक्त लोग प्रार्थना करते हैं कि हे श्री कृष्ण के प्रियतमा, हरि प्रिय, आप हमें कृष्ण की सेवा में लगाइए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हे राधा रानी, आप श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति हैं, आप प्रियतमा हैं, श्री कृष्ण आपके कृपा के बिना हम श्री कृष्ण की सेवा में नहीं लग सकते हैं। राधा रानी की कृपा से ही कोई कृष्ण को की सेवा कर सकता है, इसलिए राधा रानी की कृपा बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि राधा रानी श्री कृष्ण की करुणा शक्ति है, करुणा शक्ति हे कृष्ण करुणा शक्ति, कैसे है, हे कृष्ण करुणा शक्ति दीन बंधु जगत पते, कैसे है, हे कृष्ण करुणा सिंधु, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। श्री कृष्ण की यहाँ पहचान राधा रानी से है। तप्त कांच हे कृष्ण करुणा सिंधु, करुणा के सिंधु कौन है, राधा रानी। राधा रानी श्री कृष्ण के हृदय में जो अंतरंगा शक्ति वही करुणा शक्ति है राधा रानी। राधा रानी को अलग कर दीजिए तो श्री कृष्ण बहुत निष्ठुर हो जाते हैं, उनके हृदय में जो करुणा तरंगायित होता है वो राधा रानी के रूप में, इसलिए करुणा शक्ति कौन है? राधा रानी। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगत पते, दीन बंधु हैं और जगत पति हैं, गोपेश गोपों के जो ईश हैं, या गोपिका कांत जो गोपियों के कांत हैं, जो गोपियों के आराध्य हैं, गोपिका कांत राधा कांत जो राधा के भी प्रिय हैं, कांत हैं, पति हैं, राधा कांत। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं जो राधा रानी के दिव्य गुणों के साथ संयुक्त होते हैं, जैसे करुणा सिंधु, गोपिका कांत, राधा कांत। ऐसे राधा रानी से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हमें भगवान की सेवा में नियुक्त करें। हरे कृष्णा। जय जय श्री राधे श्याम, सबको मिले वृंदावन धाम।